नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी आज सुबह पटना के लोक भवन में बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, महिला आरक्षण विधेयक संतुलित और हर राज्य समुदाय और क्षेत्र की आकांक्षाओं को पूरा करता है। छत्तीसगढ़ में बॉयलर विस्फोट की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हुई। अंडमान सागर में एक अतिभारित ट्रॉलर के पलटने से रोहिंग्या शरणार्थियों और बांग्लादेशी नागरिकों सहित 250 लोग लापता। इसराइल और लेबनान में वॉशिंगटन में प्रारंभिक वार्ता की। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 32 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी आज सुबह पटना के लोकभवन में बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। श्री चौधरी राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले भाजपा नेता होंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल इसकी घोषणा की थी।
नीतीश जी के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से बिहार में विकास की एक नई गाथा लिखेंगे सम्राट चौधरी जी। और पूरी पार्टी का नेतृत्व, हमारे बाकी विधायक साथी सब मिलकर बिहार को हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बनाकर ही चैन की सांस लेंगे।
श्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि ये बिहार के लोगों की सेवा करने और उनके विश्वास तथा सपनों को साकार करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।
आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत चीजें सिखाया है, कैसे सरकार चलाया जाता है, कैसे बिहार में सुशासन स्थापित होगा, बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए। जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे।
संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि महिला आरक्षण विधेयक विशेष संसदीय सत्र में पेश किया जाएगा। ये विधेयक हर राज्य समुदाय और क्षेत्र की आकांक्षाओं को पूरा करता है। कल नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से संपर्क किया है और इस विधेयक का सभी ने समर्थन किया। इस विधेयक को कल से शनिवार तक चलने वाले विशेष संसद सत्र में पेश किया जाएगा। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हित में एकजुट होने के लिए सभी राजनीतिक दलों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता और इस विधेयक की प्रक्रिया में देरी नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के मांड्या स्थित श्री क्षेत्रा आदि चुनचुनगिरी मठ में श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ज्वाला पीठ भी जाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री काल भैरव मंदिर में प्रार्थना करेंगे और प्राचीन काल भैरवेश्वरम मंदिर परिसर में मठ की आध्यात्मिक परंपरा को श्रद्धांजलि के रूप में निर्मित नए मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
प्रधानमंत्री के श्री क्षेत्र आदिचुंचनगिरी आगमन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन होने वाले गुरु भैरवैक्य मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर से मिलता है, जिसमें वास्तुशिल्प कला होयसला, चोलास, चालुक्यास और गंगास के जमाने का है। इस संदर्भ में मोदी जी को मैसूर पेटा से नवाजा जाएगा। मैसूरु और बनारस रेशम से बनाए गए इस पेटा के बनावट को मैसूर के महाराजा नालवडी कृष्णराज वोडेयर पहना करते थे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का प्रचार तेज होता जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज राज्य में कई जनसभाएं करेंगे। वे दार्जिलिंग शहर के लेबोंग मैदान में एक रैली में शामिल होंगे, जिसके बाद वे जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज में एक सभा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आज राज्य में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगी। तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी भी आज कई चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगी। वे उत्तर दिनाजपुर और इस्लामपुर में जनसभाओं में भाग लेंगी। सुश्री बनर्जी सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र और नागरा काटा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में रैलियां करेंगे। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में आज हम तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले की जानकारी दे रहे हैं। इस जिले में चार विधानसभा क्षेत्र पलाकोट, पेन्नागरम, धर्मपुरी, पप्पी रेड्डी पट्टी और हुरूर हैं। धर्मपुरी में कुल 257,939 मतदाता हैं। धर्मपुरी आम और रेशम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ग्रेनाइट का भी समृद्ध भंडार है। इस क्षेत्र को तमिलनाडु में कावेरी नदी के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर सौम्या अंबुमणि इस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। वह पसुमेह थायगम की अध्यक्ष हैं, जो पूरी तरह से पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित है। यह पहली बार है जब वह विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। वर्तमान विधानसभा सांसद एसपी वेंकटेश्वरन हैं, जो एनडीए गठबंधन में डॉक्टर अंबुमणि रामदास के नेतृत्व वाली पीएमके पार्टी से हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र से डीएमके 5 बार, पीएमके 3 बार, कांग्रेस 2 बार, एआईएडीएमके और डीएमडीके 1-1 बार चुनाव जीत चुकी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी। छत्तीसगढ़ के सिंघनतेरई में बॉयलर विस्फोट की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। ये विस्फोट कल वेदांता लिमिटेड के बिजली संयंत्र में बॉयलर ट्यूब फटने से हुआ। पुलिस के अनुसार बॉयलर से टरबाइन को उच्च दबाव वाली भाप की आपूर्ति करने वाली ट्यूब में जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और प्रत्येक मृतक श्रमिक के परिजनों को 5 लाख रूपये और घायलों को 50 हजार रूपये के मुआवजे की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की मजदूरी में लगभग 3,000 रूपये तक की वृद्धि की घोषणा की है। इस वृद्धि से गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिलों में लगभग 21% की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने नोएडा में हाल ही में मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद ये निर्णय लिया। संशोधित दरें इस महीने की 1 तारीख से लागू हो गई हैं। सरकार ने 20,000 रूपये न्यूनतम मजदूरी की खबरों को भ्रामक बताते हुए कहा कि यह अंतरिम वृद्धि श्रमिकों की मांगों और उद्योग जगत की चिंताओं के बीच संतुलन स्थापित करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
राष्ट्रपति आज सुबह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नागपुर के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और बाद में शाम को नागपुर स्थित राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी एनईडीटी में भारतीय राजस्व सेवा आयकर के 78वें बैच के अधिकारी प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण समापन समारोह में भी उपस्थित रहेंगी। एम्स के दीक्षांत समारोह के दौरान कुल 210 विद्यार्थियों को डिग्रियां और स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। वहीं एनईडीटी का यह कार्यक्रम IRS के 78वें बैच के 130 अधिकारी प्रशिक्षकों के 16 महीने के सेवा पूर्व प्रशिक्षण के समापन को चिन्हित करेगा। धनंजय वानखेड़े, आकाशवाणी समाचार, नागपुर।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अंडमान सागर में मलेशिया पहुंचने की कोशिश में एक नाव के पलटने से रोहिंग्या शरणार्थियों और बांग्लादेशी नागरिकों समेत 250 लोग लापता हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के संयुक्त बयान के अनुसार नाव दक्षिणी बांग्लादेश के टेकनॉफ से रवाना हुई थी।
यह नाव कथित तौर पर दक्षिणी बांग्लादेश के टेकनाफ से रवाना हुई थी और खराब समुद्री हालात, तेज हवाओं और अधिक भीड़ के कारण डूब गई। माना जा रहा है कि यह घटना 9 अप्रैल को हुई, हालांकि पूरी जानकारी अभी साफ नहीं है। अब तक केवल 9 लोगों को बचाया जा सका है। बांग्लादेश कोस्ट गार्ड के अनुसार इन्हें एक गुजरते जहाज ने समुद्र में बहते हुए देखा और बाद में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। अधिकारियों का कहना है कि बचाए गए लोगों में से कुछ मानव तस्करी से जुड़े होने के संदेह में है। नवल संघ परमार, आकाशवाणी समाचार।
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने मेजबानी में लेबनान और इसराइल ने मंगलवार को वाशिंगटन में प्रारंभिक प्रत्यक्ष वार्ता की। ये बैठक 1980 के दशक की शुरुआत के बाद दोनों देशों के बीच पहली प्रत्यक्ष राजनयिक बातचीत है। रिपोर्टों के अनुसार वार्ता सुरक्षा व्यवस्था और नागरिक मुद्दों पर केंद्रित थी। वार्ता में इसराइल की सैन्य गतिविधि और विवादित क्षेत्रों से लेबनान की वापसी की मांग शामिल थी। इसराइल ने समझौते में हिजबुल्ला की सैन्य उपस्थिति पर भी ध्यान देने पर बल दिया। लेबनान के अधिकारियों ने हिजबुल्ला के संबंध में अपने प्रतिनिधिमंडल के बयानों की सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं की है। वहीं हिजबुल्ला ने वार्ता का विरोध किया है।
पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए राजनयिक प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इसके लिए अमेरिका 2 प्रमुख मोर्चों पर बातचीत को आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका का कहना है कि ईरान के साथ बातचीत कुछ दिनों में फिर शुरू हो सकती है, क्योंकि दोनों पक्ष युद्ध विराम को आगे बढ़ाने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव कम करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर इसराइल और लेबनान भी दशकों बाद पहली बार वार्ता कर रहे हैं। अमेरिका में हो रही बातचीत के केंद्र में सीमा पर तनाव और दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा व्यवस्था है। अमेरिका पश्चिम एशिया में कई तनावग्रस्त क्षेत्रों में स्थिरता के प्रयासों के अंतर्गत दोनों मोर्चों पर मध्यस्थता कर रहा है। हालांकि तत्काल किसी बड़ी सफलता की उम्मीद नहीं है, लेकिन अमरीका, ईरान और इसराइल लेबनान के बीच एक साथ चल रही कूटनीतिक वार्ता इस व्यापक संघर्ष को पूरे क्षेत्र में फैलने से रोकने के लिए नए प्रयासों का संकेत है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
अमरनाथ यात्रा के लिए अग्रिम पंजीकरण आज से देश भर में 554 नामित बैंक शाखाओं में ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से शुरू हो रहा है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने तीर्थयात्रियों के लिए विस्तृत प्रक्रिया जारी की है। 57 दिनों की ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर समाप्त होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
ऊंचे ऊंचे वादी में बसते हैं।
यात्रा परमिट का पंजीकरण और इसे जारी करना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की सुविधा देश भर में J&K बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और यस बैंक की 554 शाखाओं पर उपलब्ध होगी। हर पंजीकृत तीर्थयात्री और सेवा देने वाले को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस RFID जारी किया जाएगा। 13 से 70 साल की उम्र के तीर्थयात्री पंजीकरण के लिए योग्य होंगे, जबकि 6 हफ्ते से ज्यादा की गर्भवती महिलाओं को यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं एन गुलशन रैना।
वहीं खेलों में IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 32 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई की टीम ने 192 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम 160 रन ही बना सकी। चेन्नई सुपर किंग्स के नूर अहमद को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। IPL क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा और ये मैच बेंगलुरु के M. चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
धन्यवाद फरहत। समाचार पत्रों में आज सबसे पहले बात लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने के समाचार की। हिंदुस्तान लिखता है लोकसभा सीटें बढ़ाकर 850 करने की तैयारी में सरकार, महिलाओं के लिए आरक्षण 15 साल तक लागू रहेगा, बेटियों को मिलेगा हक, महिलाओं को 33% आरक्षण तय। जनसत्ता की सुर्खी है महिला आरक्षण बिल कल होगा पेश, 2011 की जनगणना होगी आधार। बिहार में सम्राट चौधरी भाजपा के पहले CM, शपथ आज, अमर उजाला सहित कई अखबारों की सुर्खी है। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है सम्राट बनेंगे बिहार के चौधरी, नीतीश की विदाई। आज सभी समाचार पत्रों ने दिल्ली से देहरादून की यात्रा का समय कम होने का समाचार दिया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन, दिल्ली से देहरादून अब 2.5 घंटे में, ऊपर से गाड़ियां, नीचे वन्य जीव निर्भय घूमेंगे। होर्मूज नाकेबंदी पर रूस ने जताई चिंता, ब्रिटेन ने भी रूस से दूरी बनाई, देशबंधु की सुर्खी है। जनसत्ता लिखता है अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को किया फोन। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय पन्ने पर सड़क दर्शन शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है किसी को खरोच मार के नहीं, अपने दम पर ही पाएं सफलता, सड़क से हमारा कैरेक्टर पता चलता है, जीवन के सफर में 2-व्हीलर सोच मत अपनाइए। धुरंधर का धमाल, 3,000 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म, राजस्थान पत्रिका ने बॉक्स ऑफिस शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है।
धन्यवाद देवेंद्र। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी आज सुबह पटना के लोक भवन में बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा महिला आरक्षण विधेयक संतुलित और हर राज्य, समुदाय और क्षेत्र की आकांक्षाओं को पूरा करता है। छत्तीसगढ़ में बॉयलर विस्फोट की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हुई। अंडमान सागर में एक अतिभारित ट्रॉलर के पलटने से रोहिंग्या शरणार्थियों और बांग्लादेशी नागरिकों सहित 250 लोग लापता। इसराइल और लेबनान ने वॉशिंगटन में प्रारंभिक वार्ता की। और IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 32 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।